ओम शांति। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मांडला। मांडला जिला है, उसमें मांडला उस गांव का नाम है। वहां पर एक नदी भी बहती है, नर्मदा। नर्मदा एकमात्र शायद ऐसी नदी है जो कि कुंवारी है, बाकी सारी नदियां जो है वो विवाहित है। तो कहानी है कि एक राक्षस था सहस्त्रबाहु, तो उसने चाहा था उससे विवाह करना, परंतु फिर उसे शाप मिल गया और वो पत्थर बन गया। और नर्मदा की जो धाराएं हैं, हजार धाराएं वहां जैसे बहती है। तो उस गांव का वो शहर है शायद, उसका नाम है मांडला। वो मांडला नाम पड़ा था एक ऐतिहासिक घटना इतिहास में हुई है। वहां से मंडन मिश्र नाम का एक व्यक्ति था, बहुत समय पहले 6वीं-7वीं शताब्दी में, जो कि बहुत ज्ञानी था। मंडन मिश्र नाम का कभी एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ था, जिस मांडला गांव की हम बात कर रहे थे। और ये जो मंडन मिश्र था, उसके पास लगभग जितने भी व्यक्ति आए थे सभी को इसने शास्त्रार्थ में हराया था। उसकी जो पत्नी थी वो बहुत बुद्धिमान थी, जिसका नाम भारती था। और कहानी ऐसी है कि युवा अवस्था में मंडल मिश्र का और उस भारती का जो शास्त्रार्थ हुआ था वो भी लगभग 6 मास चला था, और उसके बाद उनका विवाह हुआ था, क्योंकि इस तरह से कोई शर्त थी। तो शंकराचार्य, जिनकी उम्र लगभग 32 या 33 साल थी, 30-31 इस तरह उनकी उम्र थी, तो उन्होंने तो भारत में सब जगह घूमकर लगभग हर धर्म के जो दूसरे धर्म थे उन लोगों को भी शास्त्रार्थ में हरा दिया था। और वेदांत ही कैसे श्रेष्ठ है ये सबको स्वीकार कराया था, परंतु एक व्यक्ति रह गया था और वो व्यक्ति था मंडन मिश्र। तो फिर शंकराचार्य उस गांव में आते हैं, और गांव में आने के बाद पनघट पर वहां पर जो स्त्रियां होती है उनसे पूछते हैं कि क्या मंडन मिश्र का गांव यही है। वो कहते हैं हाँ। तो वो पूछता है कि मैं उनको कैसे पहचानूंगा कि ये उनका घर है। तो वो स्त्रियां हंसती है और कहती है कि ये भी कोई सवाल है, इस गांव का हर एक व्यक्ति उनको पहचानता है और बाहर से आने वाले तुरंत पहचान जाते हैं, क्योंकि उनका जो घर है और घर के पास जो तोते हैं वो तोते भी वेदों का उच्चारण करते हैं। अगर तुम्हें कोई ऐसा घर मिल गया जिस घर में जो बाहर तोते हैं वो निरंतर वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, तो समझ लेना कि वो मंडन मिश्र का घर। शंकराचार्य आता है, उसे पहले तो यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो शंकराचार्य वहां पहुंचते हैं और पाते हैं कि हाँ, कि एक घर ऐसा है कि जहां पर तोते भी वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, उपनिषदों का उच्चारण कर रहे हैं। फिर वो मंडल मिश्र से मिलते हैं। मंडल मिश्र उस समय काफी बूढ़े होते हैं। तो वो मंडल मिश्र से कहते हैं कि मुझे आपके साथ शास्त्रार्थ करना है। तो मंडन मिश्र उससे कहते हैं, वैसे तो मैं भी चाहता था कि आप जैसा कोई दिव्य प्रतिभाशाली व्यक्ति आए जिसके साथ मैं शास्त्रार्थ करूं, परंतु फिर भी सोच लो, मेरे पास अनुभव ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है, पूरी उम्र मेरी चली गई है ये सब करते हुए। तो दिखाया है दोनों का शास्त्रार्थ होता है। पहले तो शंकराचार्य को ये देखकर इतना आश्चर्य होता है कि उसके घर में जहां तोते भी वेदों का उच्चारण कर रहे हैं तो ये व्यक्ति कितना ज्ञानी होगा। कल की मुरली में बाबा ने दो प्रकार के तोते बताए थे, कौन से? एक कंठी वाले, दूसरे बिना कंठी वाले। जो पढ़ाई नहीं करते वो कौन है? जंगली। जो पढ़ाई नहीं करते वो जंगली। दोनों तोते, दो प्रकार के तोते, एक कंटी वाले एक जंगली। तो शास्त्रार्थ चलता है शंकराचार्य का, और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि जज कौन रहेगा। दो ग्रुप्स है, एक जज भी तो चाहिए प्रिसाइड करने वाला कि जो डिसाइड करे से विनर कौन है। तो शंकराचार्य देखता है कि इसकी जो पत्नी है भारती, इससे अधिक ज्ञानी कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उसने उसके बारे में भी वो कहानी सुन रखी थी। तो फिर जैसे निर्णय होता है, शास्त्रार्थ चालू होता है। शास्त्रार्थ जो चलता है वो लगभग 6 मास तक चलता है। हर दिन एक न एक उपनिषद, हर न एक न एक दिन वेद, कोई श्लोक, तो किस पर हर दिन विवाद चलता है, और लास्ट में मंडल मिश्र को वो हरा देता है बहुत मुश्किल से। परंतु उसकी पत्नी बाद में आ जाती है, वो कहती है जब तक तुम मुझे नहीं हराते तब तक ये नहीं कहा जाएगा कि तुम विनर हो। और वो फिर इसके पहले भी एक बार सुनाया था किसी प्रश्नों से पार में, तो वो कहती है कि मैं अब तुमसे विवाद करूंगी, और वो काम विकार पर उससे विवाद करती है। तो वो कहता है मुझे तो इसका कुछ पता ही नहीं, तो कहती है जाओ तुमको पढ़ो तुम। 6 मास के लिए छुट्टी। तो वो फिर किसी राजा के शरीर में प्रवेश करता है, और वो सारी बातें हमने एक बार चर्चा कर चुके हैं। और फिर वो वहां से आता है और शास्त्रार्थ चालू करता है, पर वो कहती है अब जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने मेरे पति को हरा दिया, तो इसका मतलब अर्थ मुझे हरा दिया। तो कहता है फिर तुमने भेजा क्यों था। तो ये जो शास्त्रार्थ हुआ है शंकराचार्य का और मंडल मिश्र का, सबसे इतिहास में प्रसिद्ध है। तो शास्त्रार्थ जब किया जाता है तो इस शास्त्रार्थ से बहुत सारे फायदे भी होते हैं, नुकसान भी है। परंतु यदि शास्त्रार्थ का लक्ष्य ये है, यदि डिबेट का लक्ष्य ये है कि हम अपनी प्रतिभा को बढ़ाएं, यदि डिबेट का लक्ष्य ये है कि जिससे हमारी सर्वांगीण उन्नति हो, हमारी जो विचार करने की क्षमता है वो बढ़े, हमारी जो तर्क करने की जो बुद्धि है वो बढ़े, हम ज्ञान को जिस तरह से ग्रहण करते हैं वो बढ़े, टीम वर्क, ये टीम वर्क है एक रीति से। एक विषय दिया जाए उस पर कुछ लोग उसका विरोध करना और कुछ लोग उसके पक्ष में बोलना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपस में ये मतभेद है, आपस में मतभेद की बात नहीं है। ये जो इसका जो लक्ष्य ही है वो है चिंतन, इसका लक्ष्य ही है तार्किक बुद्धि हमारी हो जाए, हमारी प्रतिभा बढ़े, हमारी विचार करने की क्षमता बढ़ जाए, वो हुनर हम में आ जाए। तो इसी लक्ष्य को लेकर आज हम एक इस सभा में एक डिबेट करेंगे। तो आज की जो डिबेट है उसका जो विषय है वो है इस ईश्वरीय ज्ञान में, इस ईश्वरीय पढ़ाई में, सप्ताह में, जैसे उस पढ़ाई में एक दिन छुट्टी होती है तो इस ईश्वरीय पढ़ाई में भी एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो हमारे पास 2 ग्रुप्स है, एक ग्रुप है ज्ञानीतु आत्मा और दूसरा ग्रुप है योगीतु आत्मा। तो ज्ञानीतु आत्मा जो है उनका ये कहना है, तो ये डिबेट 4 चरणों में होगा। सबसे पहला जो चरण है इसका, इसमें एक छोटा सा स्पीच देना होगा। इस ज्ञानीतु आत्मा ग्रुप का जो लीडर है, जो टीम लीडर है वो देगा, और फिर वो स्पीच पूरा होने के बाद में जो योगीतु आत्मा ग्रुप है वो स्पीच देंगे। योगीतु आत्मा एक 5 मिनट के लिए स्पीच दिया जाएगा अपने विषय पर, जिसमें वो जो विषय है उसके बारे में आपको आपका पक्ष रखना है। ये पहला चरण होगा। दूसरा चरण होगा एक्चुअल डिबेट। एक्चुअल डिबेट में प्रश्न उत्तर, आप एक पॉइंट रखेंगे, फिर उस पॉइंट का खंडन ये लोग करेंगे, फिर ये एक पॉइंट रखेंगे, उस पॉइंट का खंडन ये ग्रुप करेगा। ये दूसरा चरण होगा। अब तीसरा चरण थोड़ा सस्पेंस है। तीसरा चरण अभी बता दें कि बाद में बताएं?
तीसरा चरण जो है वो पहले चरण में तो आप ये बोल रहे हैं ज्ञानी तो आत्मा कि ईश्वरीय पढ़ाई में छुट्टी नहीं होनी चाहिए, दूसरे चरण में आपका पक्ष बदल जाएगा, आपको ये बोलना है कि छुट्टी बिल्कुल नहीं छुट्टी होनी चाहिए और ये कहेंगे कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए, पक्ष बदल जाएगा तीसरे चरण में। और चौथा जो चरण होगा तो चौथे चरण में फिर निर्णय होगा। तो ऐसे ये चार चरणों में डिबेट होगी। इसके पहले कि डिबेट चालू करें, ईश्वरीय पढ़ाई जो है इसकी हम एक 5 मिनट के लिए चर्चा करेंगे। तो इस ईश्वरीय पढ़ाई के मुझे आप सब 21 विशेषताएं बतानी है। माता जी सब इधर से आ जाओ बहन। अच्छा चलो चलेगा, ठीक है। आप सब इधर से है, आप सबको क्या बोलना है पता है ना? आप ये ग्रुप से है और ये ग्रुप से है, ये इधर। तो ये बहनों का और भाइयों का मिक्स ग्रुप है और ये खाली भाइयों का ग्रुप है। ये ज्ञानी तो आत्मा ग्रुप है, ये योगी तो आत्मा ग्रुप है। ये ज्ञानी तो आत्मा का इनका जो मुद्दा है वो ये है कि इस ईश्वरीय पढ़ाई में एक दिन भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, इस पर आपको बोलना है और अपने पॉइंट पर डट कर रहना है। दूसरा ये जो ग्रुप है इनको ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि खाली ज्ञान 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 से कुछ नहीं होता है, योग भी बहुत महत्वपूर्ण है और एक दिन ऐसा होना चाहिए सप्ताह में जिसपे सारा ध्यान केवल योग पर दिया जाए और सप्ताह भर की जो मुरलिया है उसका चिंतन मनन अध्ययन एकांत सब कुछ किया जाए। तो सबसे पहले इस ईश्वरीय पढ़ाई की विशेषता बताइए, पहले ये शॉर्ट चर्चा है। एक ये ईश्वरीय पढ़ाई स्वयं भगवान पढ़ाते, एक ये पढ़ाई मनुष्य से देवता बनाने वाली है। सुनीता बहन, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। तीसरा, चौथा, सारे कल्प में केवल संगम पर ही ये पढ़ाई होती है। पांचवा, ये पढ़ाई सभी के लिए है, बच्चे बूढ़े सब इसमें आ सकते हैं। सुधा बहन, ये पढ़ाई ये स्वयं भगवान परम धाम से आके पढ़ाता है। हाँ, छठवा, सातवा, वो भगवान की पढ़ाई हो गया, इसमें आधा कल्प की कमाई है, इसमें सारे विषय कवर हो जाते हैं। टीचर एक है परंतु सारे विषयों पर प्रकाश डाला जाता है। संबंध नहीं पूछ रहे, विषय स्टडी की बात चल रही है। और बताओ। हाँ, यहाँ एक ही टीचर सभी सब्जेक्ट में प्रकाश डालते हैं। और ये सच्ची पढ़ाई है, ये पढ़ाई फ्री है। और ये पढ़ाई पढ़ाने वाला निराकार है, ये पढ़ाई पढ़ाने वाला अविनाशी है, पढ़ाई अविनाशी है, पढ़ने वाले अविनाशी है। ये वंडरफुल पढ़ाई है, मुक्ति जीवन मुक्ति। और मनोज भाई, या वो हो गया पॉइंट। और एक घंटा पढ़ाई 23 घंटा इम्तिहान। ये पढ़ाई एक, वो हो गया पॉइंट। नई पॉइंट्स बताओ, हो गया नए पुराने को एक ही। अच्छा ठीक है, ये एक ही लैंग्वेज में है पढ़ाई, वो तो बाद में हो गई अलग अलग लैंग्वेज में। और थोड़ी दूसरी पॉइंट बताओ, ये नहीं। और जितना पढ़ो उतना कम है। इस पढ़ाई से अशरीरीपन या आत्मा डिटैच हो जाती है शरीर से। ये पढ़ाई बुद्धि को दिव्य बनाने वाली है, वही पारस बुद्धि वाली। ये पढ़ाई आत्मा का भोजन है, नहीं ज्ञान नहीं। पढ़ाई पढ़ाई के बारे में, स्टडी क्या है, ये एग्जाम क्या आने वाली है, कब होने, लास्ट पेपर पहले ही पता है, ये क्वेश्चन भी पता है, टाइम भी पता है, आंसर भी पता है, खाली टाइम पता नहीं है। दूसरा, भगवान ही पढ़ाते, कोई और नहीं पढ़ा सकता है। और हाँ, अभी फेल तो कल्प कल्प फेल, कॉपी करने के लिए खुली छूट है। हो गया ना पॉइंट, जो पॉइंट हो गया वो रिपीट नहीं करने। और देवेंद्र भाई, ये पढ़ाई की विशेषता, हो गया वो, अनपढ़ भी पढ़ सकते हैं, लीडर्स बनते हैं और त्रिकालदर्शी बनते हैं। 21 हो गए, कुछ रह गया क्या? क्या हो जाते हैं? दुनिया को पलटा देती है। 7 दिन के कोर्स के बाद पढ़ाई शुरू होती है। इस पढ़ाई पर अटेंशन से सारे टेंशन दूर हो जाते हैं। चलो ये तो हो गया पढ़ाई, अभी एक्चुअल आज का जो टॉपिक है वो चालू करते हैं, डिबेट। तो ये सारा ग्रुप इस तरफ है, ये सारा ग्रुप इस तरफ है। तो सुशील भाई आप पहले अपना पक्ष रखेंगे, कुछ मिनटों में पूरा संक्षेप में कि आपका जो आप जिस पर डिबेट करने वाले हैं उस पे बारे में बताएंगे। पहले अपना पक्ष रखना है आपको सबसे पहले।
ओम शांति। ज्ञानी तो आत्मा ग्रुप की ओर से ये बताया जाएगा कि ये जो ज्ञान है ये सारे सप्ताह में या सारे जो ब्राह्मण जीवन में, यहाँ इस ब्राह्मण जीवन में एक दिन भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो इसी को लेकर अगर हम देखें या आज तक भी जो हमने मुरलियां पढ़ी हैं, सुनी हैं, बाबा से सुनी हैं, तो उनके माध्यम से ऐसा लगता है कि लगता है और है ही कि एक केवल एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो आत्मा के जंक को उतारता है। और इसे निरंतर इसलिए आवश्यकता क्योंकि आत्मा के अंदर बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां हैं और वो निरंतर दवाई लेना जरूरी है। जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं कि अगर 7 दिन की दवाई दी जाएगी तो 7 दिन खानी पड़ेगी, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर ब्रेक किया तो फिर से बीमारी समय पर ठीक नहीं होगी, शफा नहीं देगी। इसी तरह से बाबा कहते हैं 7 दिन का कोर्स जरूरी है, अगर 7 दिन का बीच में एक बार ब्रेक कर दिया तो दोबारा फिर से चालू करो। इसलिए जन्म जन्म से आत्मा के ऊपर जंक चढ़ी है, इसको उतारने के लिए निरंतर इसको ज्ञान योग में डुबाना अति लाजमी है, जरूरी है, आवश्यक है। क्योंकि आत्मा जो विकारों से पीड़ित है, ग्रसित है, अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है। इस ज्ञान को तो छोड़ना ऐसे हो गया जैसे सप्ताह में कहा जाए अगर एक दिन की छुट्टी है तो माना धारणाओं की छुट्टी, अगर धारणाओं की छुट्टी है तो धारणाएं कुछ भी हो सकता है, विकारों का जो तूफान है अंदर से फिर वो बाहर आ सकता है, एक सेकंड में किया क्रय सत्यानाश हो सकता है। इसलिए कदम कदम पर ये फूक फूक रखकर चलना है। इसलिए किसी भी हालत में एक दिन क्या एक सेकंड भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। ओम शांति।
ओम शांति। श्याम भाई योगी तो आत्मा ग्रुप की तरफ से प्रस्तावना।
ओम शांति। जैसे योगी तो आत्मा ग्रुप की तरफ से कहा गया है बोलने के लिए, तो जैसे सुशील भाई ने भी बताया ये 7 दिन की पढ़ाई है, इसमें कभी भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाबा मुरली में कई बार कहते हैं कि आप 7 दिन का कोर्स करने के बाद कहीं भी चले जाओ, एक बार ये बुद्धि में ज्ञान बैठ गया इस ज्ञान को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है शरीर को छोड़ना, आत्माभिमानी स्थिति। तो जैसे अभी थोड़े दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा था व्यक्त मुरली में कि आवाज से परे की दुनिया में रहने वाले बाप आवाज की दुनिया में आकर आवाज से परे ले जाने के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो हमारा लक्ष्य है आवाज से परे जाना, तो इसमें पढ़ाई ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे सुशील भाई ने बताया कि दवाई खाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं 7 दिन दवाई खाओ कोर्स पूरा करो, तो कोर्स पूरा करने के बाद में डॉक्टर कुछ साथ में परहेज भी बताते हैं, अगर आप परहेज नहीं कर रहे हैं और केवल दवाई खा रहे तो उतना इफेक्ट नहीं करेगी, तो उसका परहेज करना भी बहुत जरूरी है। तो जैसे बताते हैं कि अगर कोई नेचुरोपैथी में जाते हैं, वहाँ हम साल भर यहाँ खा रहे हैं और वहाँ नेचुरोपैथी में जाके 10 दिन 15 दिन जाके हम नेचुरोपैथी करके आते हैं, और यहाँ आने के बाद अगर हम उस पर दोबारा फॉलोअप नहीं करते हैं तो उसका कुछ फायदा नहीं होता है, हम केवल पढ़ ही रहे अंदर कुछ जा नहीं रहे, प्रैक्टिकल में कुछ उतर ही नहीं रहे, क्योंकि हमारी पढ़ाई जो है प्रैक्टिकल की पढ़ाई है। जैसे इंजीनियरिंग या इसमें भी होता है, डॉक्टर्स में इसमें भी होता है, मेडिकल प्रोफेशन में भी, कि पढ़ाई जो है केवल 2 घंटे की होती है और बाकी 4-5 घंटा जो है प्रैक्टिकल का होता है, तो हमको इस पढ़ाई को प्रैक्टिकल में लाना है। हमारा लक्ष्य जो मेन है कि देह से ही देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो इसमें ज्यादा कुछ पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं है जहां तक मुझे लगता है। तो हफ्ते में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए कि उस दिन जो है अपने आप की हम सेल्फ चेकिंग कर सकें कि हमने कितनी पढ़ाई की है, छह दिन की मुरली में कितना दिन याद रहा। ऐसे जैसे कई बार डॉक्टर सचिन भी बता चुके हैं कि एक ही मुरली हमें अव्यक्त बनाने के लिए या संपूर्ण बनाने के लिए काफी है। तो मुझे तो लगता है कि एक ही मुरली जो है छह दिन पढ़नी चाहिए, छह दिन की अलग मुरली भी नहीं होनी चाहिए, 30 दिन नहीं, हफ्ते में एक दिन छुट्टी की बात चल रही ना यहाँ पे, तो छह दिन एक ही मुरली पढ़नी चाहिए और 7 दिन हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि हमने उस मुरली में से कितना धारणा की है, कितना अपने आप को उसके योग्य बनाया है, कितनी सारी बातें हमारे लाइफ में आ चुकी है। ओम शांति।
ओम शांति। पहला चरण पूरा हुआ विवाद का, अभी डिबेट का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मेन चरण जो है वो है एक्चुअल डिबेट। तो अभी डिबेट चालू होती है, डिबेट चालू करेंगे ज्ञानी तो आत्मा ग्रुप की तरफ से। ज्ञानी की तो आत्मा के ग्रुप की तरफ से एक पॉइंट उठाया जाएगा, फिर उसका खंडन आप लोगों को करना है और आप लोग सब मिलके बताएंगे और वो श्याम भाई माइक से बोलेंगे। शुरू।
माय लॉर्ड, पॉइंट बी नोटेड।
पॉइंट टू बी
नोटेड। कहा गया कि 7 दिन के बाद कहीं भी जा सकते, पहले 7 दिन पढ़ाई पढ़ ली, फिर कहीं भी जा सकते आप, पढ़ाई पढ़
आप, बाकी सब लोगों का भी फीडबैक लेना है।
तो सात दिन पहले, 7 दिन छह दिन ही रहे, 7 दिन के बाद कहीं भी पढ़ाई पढ़ सकते। तो कहीं भी बाबा ने ये नहीं कहा 6 दिन पढ़ो, 7 दिन ही पढ़ो, निरंतर पढ़ो, उसमें एक दिन की छुट्टी की मार्जिन नहीं दी गई है। दूसरा फॉलो,
एक ही पॉइंट पहले। हाँ। तो आपका क्या मुद्दा है?
7 दिन का कोर्स है, तो बाद में ये नहीं कहा गया सामने वाले से कि बाद में 6 दिन कब करना है, 7 दिन की बात कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं, तो 7 दिन ही पढ़ सकते हैं उसको।
तो बाबा ने कहा है 7 दिन के बाद, ऐसा नहीं कहा है कि 7 दिन ही पूरा पढ़ना है,
7 दिन के बाद कहीं भी कोर्स
करा सकते हो।
हाँ,
कहीं, अच्छा, तो इनका ऐसा कहना है, पावरफुल पॉइंट है ये, तो इनका कहना है कि बाबा ने कहा है कि 7 दिन पढ़ाई है, कोर्स है, उसके बाद कहीं पर भी पढ़ सकते हो, ये नहीं कहा है कि पढ़ाई रोक दो। तो अभी इसके बारे में आपका क्या कहना है, फटाफट जल्दी जल्दी बोलो। चलो, ये बोल रहे, ये नहीं, पढ़ाई के लिए छुट्टी नहीं बोला है। तो
ज्ञान को भोजन भी कहते हैं, लेकिन भोजन को जब तक हम हजम नहीं करेंगे तब तक उसका रस नहीं बनता है। तो ज्ञान को हजम करने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, एक दिन चाहिए हफ्ते में।
ज्ञान को
ऐसे नेचर कर में भी क्या बोलते हैं कि उपवास करो तो आपका अच्छा हो जाएगा।
तो इनका कहना है कि ज्ञान का, हाँ, उनको माइक दे दो, मैं एक माइक। तो इनका कहना है योगी तो आत्मा ग्रुप का कि भले आप पढ़ाई तो चालू रखनी है, परंतु भोजन को हजम करने के लिए टाइम चाहिए रहता है।
पॉइंट ये है कि अगर ये भी मान रहे हैं कि आत्मा का भोजन पढ़ाई है, तो जैसे कि शरीर को भोजन रोज चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी भोजन रोज चाहिए। हाँ। तो 6 दिन क्यों, 7 दिन ही लेना है ना पूरा
भोजन? पूरा लेना है, पर इनका कहना है कि एक दिन हजम करने के लिए चाहिए।
नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे शरीर को भोजन है ना, एक दिन में अगर आप अभी एक मील खाओगे तो 4 घंटे में वो भोजन स्टमक से नीचे उतर जाता है।
इनका ऐसा कहना है कि भोजन अपने आप हजम हो जाएगा, आपको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं। अभी क्या कहना है, हजम करना स्वतः ही होगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हाँ। भक्ति मार्ग में उपवास करते हैं एक दिन, तो नहीं मार्ग है ना, तो उपवास से शरीर की क्योरिंग हो जाती है।
हाँ।
तो उसमें भी एक दिन जो हम करेंगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव फिर कब?
अनुभव करने के लिए एक दिन उपवास किया जाता है भक्ति मार्ग में भी, तो वहाँ पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, मतलब उपवास के बाद अच्छा लगता है। रुको, आपका क्या कहना है? इन्होंने भक्ति मार्ग का उदाहरण दिया,
जैसे वो भक्ति मार्ग है वहाँ पे उपवास की बात है, लेकिन ज्ञान मार्ग में पढ़ाई से उपवास है ही नहीं।
तो हाँ, इनका ऐसा कहना है ये ज्ञान मार्ग है, इसके लिए आपका उदाहरण गलत है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में पढ़ाई में उपवास बाबा ने कभी बोला नहीं।
यहाँ बाबा ने उपवास,
एक आपका हो गया है इधर।
जैसे अगर सबको पता होगा तो बाबा हमेशा कहता है कि जो ज्ञान मार्ग में होता है वही चीजें भक्ति मार्ग में फॉलो होती
है। तो इनका ऐसा कहना है, बाबा ने कहा है जो ज्ञान भक्ति मार्ग में होता है वही ज्ञान मार्ग में होता है, इसलिए इन्होंने जो उदाहरण दिया है वो सटीक है, वो सही है। आपका क्या कहना है?
बाबा जो उपवास का अर्थ बताया,
हाँ,
जो बाप के समीप रहना है,
हाँ,
तो न कि निर्जल बाप भूखे रह के शरीर का कष्ट देना।
बाबा ने जो अर्थ बताया उपवास का वो ऐसा अर्थ, रुको, बाबा ने जो अर्थ बताया है वो ऐसा अर्थ बताया है कि भोजन का उपवास नहीं है, ये तो बाबा के पास रहना, ये उपवास है। क्या कहना है
बाबा के? भोजन की बात तो सिर्फ उदाहरण में दिया गया।
हाँ।
भोजन के तो सिर्फ उदाहरण दिया है, वास्तव में तो उपवास में ना ऊपर रहना, तो ज्ञान हाँ। तो साथ छह दिन लिए ना
हाँ।
उसको चिंतन करते करते ऊपर में वास करना
हाँ। तो इनका ऐसा कहना है, उपवास का आपने जो अर्थ बताया भगवान के पास रखना, तो इन्होंने कहा कि चिंतन करते करते
नहीं, तो छह दिन जो हमने
तो छह दिन इन्होंने जो पढ़ाई की है,
चिंतन करना है ना हमको।
एक मिनट, जो छह दिन इन्होंने पढ़ाई की, सातवें दिन इनका ऐसा कहना है कि सातवें दिन हम उसका चिंतन करके बाबा के पास रहेंगे, ये उपवास है। आपका क्या कहना है? एक मिनट उधर दे दो माइक दे दो, उधर दे दो।
जैसे भाई
सब कुछ
जैसे भाई बोल रहे कि चिंतन करते करते ऊपर पहुंचते, तो छह दिन इनको ऊपर नहीं पहुंचना है चिंतन करते करते?
एक मिनट, छह दिन आपको ऊपर नहीं पहुंचना है, बोलो।
छह दिन भी हमें ऊपर ही पहुंचना है
हाँ।
लेकिन सातवां दिन विशेष हम एक्स्ट्रा
हाँ, तो सातवां दिन इनका कहना है विशेष हम ऊपर पहुंचने का पुरुषार्थ करेंगे, उपवास हाँ, ज्यादा
चिंतन से ही करेंगे ना ये तो, क्योंकि इनकी विधि
नहीं तो हमारा है ना कि मुरली सिर्फ नहीं सुने, बाकी चिंतन के ऊपर बात करना।
इसी तरह एक एक दिन हफ्ते में एक दिन अगर छुट्टी लेते रहेंगे तो ज्ञान सागर हमको कब मिलेगा, फिर मिलेगा क्या सारी कल्प?
एक मिनट, इनका ऐसा कहना है अगर एक दिन छुट्टी लेते रहेंगे तो ज्ञान उस दिन का आपको कम हो जाएगा। तो अभी बोलेंगे, रुको अभी इधर
बाबा ने,
सब लोग बोलेंगे एक एक के पास जाएगा।
बाबा ने मुरली में कहा है कि बाबा के एक एक शब्द रतन है और वो पद्मों की कमाई जमा कराने वाले
हाँ।
तो अगर हम छह दिन की मुरली के एक एक रतन को अगर हम याद रखते हैं
हाँ।
रोज का रोज सुनते रहे, अगर भूलते रहे नेमिनाथ को जो बाबा ने उदाहरण
हाँ,
दिया था
हाँ।
तो क्या हल होगा
हाँ,
अगर छह दिन का अगर हमने प्रैक्टिकल मिले आया तो सातवां दिन तो अपने आप।
इनका ऐसा कहना है कि जब एक एक वाक्य ही रतन है तो छह दिन इतने रत्न मिल रहे हैं, उनको एक दिन प्रैक्टिकल में लाना है। आपका क्या कहना है?
ओम शांति।
ये पॉइंट के बारे में बताओ, अभी जो पॉइंट बोला उसी जो पॉइंट हुआ उसी का खंडन करना है।
अच्छा, बाबा ने कहा
नहीं आता है तो छोड़ो,
ज्ञान मार्ग में दे दो। जो है परिस्थितियाँ कभी भी किसी समय आ सकती है
हाँ, इनका कहना है
परिस्थिति किसी समय भी आ सकती है, और अगर हमने एक दिन भी छुट्टी की
हाँ।
तो हमारे पुराने संस्कार और इमर्ज हो सकते हैं और वे कर्म का खाता
बन सकते हैं। ऐसा कहना है कि एक दिन अगर छुट्टी की और उस दिन परिस्थिति आ गई तो वो संस्कार इमर्ज, रुको अभी, संस्कार इमर्ज हो सकते हैं। उत्तर क्या है आपका?
परिस्थिति पर स्वस्थ से हम विजय प्राप्त।
माइक, परिस्थिति पर इनका कहना है स्वस्थिति से विजय प्राप्त कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उस दिन पढ़ाई की है, क्योंकि स्थिति हम बना रहे हैं ना, तो स्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करेंगे। अभी रुको, अभी आपकी तरफ से
बाबा ने
ये पॉइंट के बारे में, ये पॉइंट के बारे में बोलना है, इधर उधर का नहीं, ये पॉइंट का खंडन करो।
उपवास के लिए बोल रहे हैं,
इधर माइक दो, चलो चलो जल्दी जल्दी शिफ्ट करो माइक, जो पॉइंट है उसी का खंडन करना।
स्थिति बनेगी ही स्मृति से, स्मृति माना हमारे पास इन्फॉर्मेशन, माना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हमारे ब्रेन में माना इसमें रहते हैं, तो तभी तो हम
हाँ, स्थिति। तो इनका ऐसा कहना है, आप स्थिति की बात आपने की, तो स्थिति का आधार स्मृति है और स्मृति का आधार ज्ञान है, अगर ज्ञान बुद्धि में है तो ही स्मृति,
लेकिन
अगर ज्ञान बुद्धि में है तो ही स्मृति रहेगी और स्मृति है तो ही स्थिति बनेगी, तो अगर आपने छुट्टी दे दी तो उस दिन स्मृति नहीं रहेगी फिर आपकी। तो
भोजन की क्वालिटी होती है, जैसे भोजन की क्वालिटी खाते ही रहे,
बहुत नजदीक लो,
भोजन खाते ही रहे तो क्या होगा, थोड़ा उसको रिलैक्स तो चाहिए ना।
इनका ऐसा कहना है कि क्या भोजन खाते ही रहेंगे, थोड़ा सा टाइम
चाहिए, एनी टाइम बुद्धि को
एंजॉय। इधर दे दो माइक,
अगर वो छोड़ दिया उस दिन की पढ़ाई छोड़ दी और उसी दिन कोई ऐसा पॉइंट आने वाला कि अनेक जन्मों के विकर्म विनाश हमारे उससे होने वाले हैं और उससे हम वंचित रह जाएंगे
हाँ, ये पॉइंट इनका पावरफुल है कि इनका ऐसा कहना है कि उस दिन एक ऐसा पॉइंट आने वाला है, वो तो आपने मिस कर दिया, भले आपने छह दिन पढ़ाई की और सारे पॉइंट्स है, पर उस दिन का नया पॉइंट आने वाला है वो आपने मिस कर दिया, तो वो तो आपका नुकसान हो गया फिर, और आप चिंतन में लगे हैं छह दिन के पॉइंट्स में, जबकि नया पॉइंट सातवें दिन आया।
जो बातें उन्होंने बताया, जो बातें उन्होंने प्रैक्टिकल में लाया है, तो उनका आतुरन से भी हम जान सकते हैं कि कौन सा पॉइंट इनके जीवन में आया है।
क्या क्या
प्रश्न?
जो प्रश्न ये है कि छह दिन आपने पॉइंट्स जो धारण किए रत्न, और सातवें दिन छुट्टी थी, पर सातवें दिन एक नया पॉइंट आया वो आपने मिस कर दिया ना फिर?
मिस कर दिया, लेकिन उन्होंने जो पॉइंट को धारण किया है तो उनके आचरण से हम समझ जाएंगे कि इन्होंने क्या धारण किया।
छह दिन में
इट मीन्स के आप हमको फॉलो करेंगे साथ में।
एक मिनट, छह दिन जो पॉइंट्स आ गए उनको उन्होंने धारण कर चुके हैं, इसके लिए उनको सातवां पॉइंट स्वतः ही समझ जाएगा सातवें दिन का।
इट मीन्स के भगवान से भी ऊपर चलेगी सातवें दिन, अच्छा तक समझ जाएगा। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि सातवें दिन हमको ये पॉइंट मिलेगा?
ये आप कैसे,
ये भगवान की कह के हम सातवें भगवान हमको
सबसे पहली बात है,
एक मिनट,
सबसे पहली बात है कि बाबा ने जितना हमको अभी तक सुनाया है मुरली, उसमें एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है।
हाँ, एक भी पॉइंट
नहीं छोड़ा है।
बाबा ने सारे पॉइंट बता चुके हैं।
हाँ। बाबा ने कहा अंत तक मैं तुमको गुहे ऐसे बताता रहूंगा।
हाँ।
नहीं, वो तो छह दिन के अंदर आ जाएगा ना, वो तो कोई बात नहीं
बाबा।
जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, पढ़ाई
का नहीं है। वो रिवाइज हो रहा है, ये रिवाइज कोर्स है 69 के जून के।
चलो नागेश भाई को दे दीजिए। नागेश भाई क्या कह रहे हैं, एक मिनट
की बात ऐसी है,
आवाज नहीं आ रहा है।
पॉइंट छुटने की बात है, हम छुट्टी लेने की बात कर रहे हैं। एक ही पॉइंट को अगर छुट्टी लेके उसका अच्छी तरह काम करते हैं उस पर, तो वो सात दिन काम करेगा, वो सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे।
अगर आप धारण करते हैं तो सात दिन काम करेगा, आप एक दिन कोई जरूरी नहीं है कि उस दिन भी आप धारण नहीं करते।
लेकिन आत्मा को अनेक प्रकार की बीमारियां एक टैबलेट से ठीक होने वाली नहीं है।
आत्मा को मल्टीविटामिन मल्टी ड्रग चाहिए,
उसमें सब कवर हो जाता है। ऐसा न्यूट्रिशन है, वो अच्छी तरह काम करते हैं, ऐसी अनुभूति कर लिया जाए वो काम करेगा।
तो इनका ऐसा कहना है कि एक ही उसमें सारी अनुभूति आ जाती है, आपको इतनी सारी अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है।
बाबा ने बोला हमारे पढ़ाई में नवीनता चाहिए, हर दिन मनोरंजन होना चाहिए, एक ही पढ़ाई सात दिन हम करते
रहेंगे। इन्होंने मनोरंजन का पॉइंट उठाया है। इनका ऐसा कहना है कि एक ही पॉइंट नहीं, हर दिन नया नया चाहिए, इसके लिए एक दिन भी छुट्टी ना हो,
बोर हो जाते हैं।
विदेशों में ये विधि है, आदत है कि छुट्टी दूर जाते हैं दर्शन के लिए, एंजॉय करने के लिए। इस तरह से हमको भी थोड़ा सा रिलैक्स कहो या कैसे भी करके, मतलब रिलैक्स का मतलब यह नहीं कि ज्ञान योग छोड़ना।
क्या?
हाँ, ओम शांति।
क्या कहा? एक
ओम शांति, ओम शांति। मनोरंजन
एक पॉइंट हो गया है आपका, फिर से बताइए क्या कहा, कौन सा उदाहरण दिया आपने? भक्ति का,
विदेश का, जो विदेश में लोग हैं ना, खास छुट्टी मनाने
लोग जो होते हैं,
लेके एक्सकर्शन के लिए जाते हैं,
एक्सकर्शन के लिए बाहर जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, थोड़ा सा तो एक दिन थोड़ा रिलैक्स हो जाता
है। लेकिन रिलैक्स में ना पूरा उसे अच्छुतर वो बात
नहीं है, थोड़े समय के लिए। आपका क्या कहना है?
दुनिया वाले हफ्ते में एक दिन छुट्टी मनाते हैं, बहुत खर्चा कर लेते हैं, मना बहुत खाते हैं पीते हैं, दूसरे दिन बीमारी आ जाते हैं उन लोगों को।
देखो एक्सकर्शन पे जाओ तो दूसरे दिन बीमार पड़ जाते हैं, आपको क्या कहना है?
रिफ्रेश हो जाते हैं, उसकी तंदुरुस्ती बढ़ जाती है, स्फूर्ति बढ़ जाती
है। कहना है कि रिफ्रेश होते हैं तंदुरुस्ती बढ़ती है, क्या कहना है ये पॉइंट के बारे में? चलो दो फटाफट।
पांव दर्द होता है संडे, हम देखते नहीं जाते, घूमने वाले थक के आ जाते हैं, चलने के लिए भी नहीं होते।
और मन को एक भी दिन ढीला छोड़ दिया ना, तो फिर वो वापस है ना बैक टू स्क्वायर वन होगा। इतनी मेहनत
कहना है, मन को एक दिन भी ढीला नहीं छोड़ो, एक दिन छोड़ा तो वो पूरा आप नीचे पहुंचे।
सबसे पहले तो हमने ढीला छोड़ा ही नहीं है।
इन्होंने एक
हमने ढीला कहा,
पढ़ाई छोड़ रहे ना, पढ़ाई छोड़ो,
छुट्टी नहीं ले रहे हैं हम, तो सोने के लिए विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं।
वो
नहीं, हम तो चिंतन कर रहे हैं ना,
चिंतन कर रहे हैं। ये पढ़ाई से मतलब उस दिन खाली ज्ञान नहीं, चिंतन कर रहे हैं, छुट्टी नहीं है, चिंतन से छुट्टी नहीं है।
सेवा बढ़ जाती
है। मंजू बहन ये पॉइंट का खंडन करो, छुट्टी नहीं ले रहे, चिंतन कर रहे हैं, पर पढ़ाई से उस दिन पढ़ाई सुन नहीं रहे, चिंतन कर रहे हैं, तो आपको क्या कहना है?
लेकिन चिंतन में कभी कभी स्लिप भी हो जाते हैं और भी चिंतन चल जाता है, क्योंकि उसी दिन हमने ज्ञान नहीं पढ़ा है।
हाँ, क्योंकि आपका दूसरा बाह्य चिंतन आ जाएगा, क्योंकि उस दिन का ज्ञान नहीं पढ़ा हुआ है। छह दिन का आप चिंतन कर रहे हो, पर उस दिन का पढ़ा नहीं है, तो बाहर का परचिंतन आ सकता है। आप बताओ, बाहर का परचिंतन? प्रकाश भाई, हर एक को चांस नहीं, रोको प्रकाश भाई। हाँ, आपका क्या कहना है?
एक दिन
नहीं, अभी जो मंजू बहन ने पॉइंट बोला उसका खंडन करना है। इनका कहना है कि चिंतन, आप चिंतन करते करते बाहर का चिंतन आ सकता है, क्योंकि उस दिन की आपने पढ़ाई नहीं पढ़ी है, तो आपको क्या कहना है?
बात ऐसी है कि जो विद्वान पंडित होता है, जो भी होता है, वो जब मरने की वक्त होता है तो क्या वो पूरा शास्त्र पढ़ के मरता है क्या? एक ही पॉइंट होता है उसको, राम नाम जपो और चले जाओ।
हाँ, वो स्वरूप
बन जाता है। कोई जरूरत नहीं कि पूरा पढ़ते रहो।
ठीक है, ओके। अभी ये दूसरा चरण यहाँ पर पूरा होता है। नहीं अभी, अच्छा बोल दीजिए, एक पॉइंट नहीं, अरविंद भाई ने एक भी पॉइंट नहीं बोला है, बोलो।
बाबा ने कहा कि बाप एक दिन में पढ़ाई पढ़ाना मिस नहीं करते, तो बच्चों को भी पढ़ाई एक दिन में मिस नहीं करनी चाहिए।
बाबा को पढ़ाई मिस नहीं करते तो आप क्यों मिस कर रहे हो, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, अभी ये
ब्रह्मा बाबा का रिकॉर्ड इसमें है,
ब्रह्मा बाबा का भी रिकॉर्ड है। अभी ये दूसरा चरण यहाँ पूरा हुआ, अभी तीसरा चरण चालू हो रहा है। अभी तीसरे चरण में ग्रुप बदल रहा है। आपको ये अभी बताना है कि एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी। आप अभी ज्ञानी तो आत्मा है और ये आप अभी आप योगी तो आत्मा है। आपको अभी ये करना है कि चिंतन करना है। जो इन्होंने पॉइंट्स रखे अभी नए पॉइंट्स आपको रखने हैं। तो अभी डिबेट चालू करते हैं। स्टार्ट सुशील भाई
स्टार्ट इधर से करना।
हाँ कि छुट्टी जरूरी है।
देखिए जब दवाई दी जाती है तो मरीज की हालत बहुत नाजुक हो जाती है तो उसको कुछ दिन के लिए उपवास रखने के लिए कहते हैं तो उसमें कुछ दिन तक दवाई छोड़नी पड़ती है। उसमें डॉक्टर देखता भी नई दवाई चालू करेगी तब तक बीच में तो गैप रखता ही है तो छुट्टी तो होनी चाहिए।
छुट्टी होनी चाहिए क्योंकि नई दवाई चालू करनी है। तो आपका क्या कहना है?
दवाई
मेरे ख्याल से बहुत नजदीक ले लो।
दवाई का जैसे कोर्स होता है डॉक्टर कहते हैं कि 7 डेज का कोर्स है या जैसे केमोथेरेपी करते कुछ भी जैसे कोर्स देते हैं तो पूरा कोर्स पूरा होने के बाद में ही आप दवाई चेंज कर सकते हैं। बीच में आप रोक नहीं सकते। अगर आपने बीच में दवाई रोक दी अपनी मर्जी से आपको ठीक लग रहा है लेकिन आपने रोक दी अपनी मर्जी से तो वो बीमारी दोबारा आ सकती है और बड़े फॉर्म में दोबारा आ सकती है।
अपनी मर्जी से दवाई अगर रोक दी तो दवाई बीमारी फिर से आएगी।
आपको 7 डेज की छुट्टी लेने के लिए कब बोला है?
एक मिनट
आपका पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हो चुका है अभी आपका रिवाइज कोर्स चल रहा है इसलिए हाँ। जरूरी नहीं है कि मान ले डेली पढ़ाई पढ़नी है।
देखो बाबा का कहना है ये रिवाइज कोर्स चल रहा है क्योंकि पढ़ाई तो पढ़ा चुके हैं तो जरूरी थोड़ी ना है वापस वही पढ़ना। हाँ बोलिए। आपको हर दिन पढ़ना है हर दिन पढ़ना है। आप अभी ज्ञानी तो आत्मा है।
जैसे बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट तो हम जितना पढ़ते जाएंगे तो उस चीज में परफेक्ट होते जाएंगे। मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा जितना बार आप रिवाइज करते जाएंगे तो एक बार वो चीज आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएगी।
जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा परफेक्शन आएगा।
तो इसीलिए तो जैसे 6 दिन जो हमने पढ़ा उसको हम प्रैक्टिस में लाएंगे संडे को
ये लोग प्रैक्टिस
तो पूरा हम ध्यान देंगे प्रैक्टिस पे और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
तो प्रैक्टिस एक दिन पूरा प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। चलो दूसरे लोग बोलो रमेश भाई को दीजिए।
प्रैक्टिस तो हमको रोज करनी है। जैसे यहाँ पढ़ाई पढ़ो 1 मिनट के बाद में एग्जाम दो हाँ। तो जरूरी नहीं है कि 7 दिन के बाद में आपको एक प्रैक्टिस करके उसका फाइनल
हाँ,
एग्जाम
देना। जरूरी नहीं है कि यहाँ तो रोज पढ़ाई करनी है।
उसी समय अगर आपकी अंत घड़ी आ गई आप सोच रहे कि हम 7वें दिन प्रैक्टिस करेंगे और पहले दूसरे दिन के बाद में आप ओम शांति हो गए तो
मैं
अगर हम 6 दिन अच्छी तरह से पढ़ते हैं योगयुक्त होकर पढ़ाई को पढ़ते हैं और उसका स्वरूप बन जाते हैं
हाँ।
तो एक दिन अगर हम आत्मा समझ के परमात्मा को निरंतर याद में रहते हैं तो हर परिस्थिति को क्रॉस कर सकते हैं। तो नॉट रिक्वायर्ड कि वो एक छुट्टी चाहिए,
हाँ,
चाहिए।
तो इनका ऐसा कहना है कि 6 दिन अपना पढ़ाई करो और 1 दिन स्थिति बनाओ और आत्मा समझ के याद करो।
लेकिन परिस्थिति 6 दिन नहीं आएंगी ऐसा क्या कभी भी आ सकती है?
परिस्थिति कभी भी आ सकती है।
आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे तो परिस्थिति क्रॉस हो जाएगी ना। हमारी
परिस्थिति क्रॉस हो जाएगी क्योंकि स्थिति पावरफुल है उस दिन। ये पॉइंट के बारे में
जैसे
हाँ
साइकिल को बोलते ऑयलिंग जरूर है
हफ्ता
में एक दो दिन ऑयलिंग जरूर है
हाँ।
ऐसे ही हमारा जो शरीर का रूपी साइकिल है
हाँ।
तो उसको एक दिन के लिए ऑयलिंग जरूर
है। राइट बहुत पावरफुल पॉइंट है कि एक दिन ऑयलिंग चाहिए। रमेश भाई क्या कहना है? जिस दिन ऑयलिंग चाहिए उस दिन गाड़ी को रुक के ऑयलिंग करके शांति से उसको थोड़ा आराम देना चाहिए। आपका क्या कहना है?
लेकिन क्या है ऑयलिंग करने के बाद यदि गाड़ी को रोक के रख देंगे तो वो ऑयल जम जाएगा।
हाँ चलो आप बोलो माता जी। ऑयलिंग तो कर दिया पर पूरा दिन गाड़ी चला ही नहीं तो एक मिनट वही पॉइंट का खंडन नहीं एक मिनट खंडन करो इसका इस पॉइंट का खंडन।
गाड़ी तो 6 दिन चली ना
6 दिन तो चली
7वें दिन ऑयलिंग के लिए गाड़ी खड़ी रखी हमने ऑयलिंग की उस दिन 6 दिन तो चलती रही फिर
नहीं पर आप 7वें दिन गाड़ी नहीं चलाएंगे
7वें दिन ऑयलिंग गाड़ी खड़ी कर दी उस दिन ऑयलिंग की।
आपका क्या कहना है? एक दिन गाड़ी खड़ी करना है
प्रॉपर मेथड नहीं होता है टेक्निकल। इसमें अगर आप किसी भी चीज में ऑयलिंग करते हैं ग्रीसिंग करते हैं तो उसको उसी समय चलाना भी होता ताकि वो जो सब पार्ट जगह डालेंगे एक ही जगह जमा होगा।
बाबा ने तो कहा हुआ है ऐसा दिन आएगा कर्फ्यू लगेगा आपको घर से बाहर निकलने की नौबत नहीं आएगी मना रहेगी।
तो इतनी जो मुरलियां हम डायरियां भर रहे हो किस दिन काम आएगी?
उसी दिन काम आएगी जब छुट्टी करेंगे।
हाँ तो उस दिन पढ़ना है ना वो
उसी दिन पढ़ना ना
तो घर के बैठे पढ़ना है
वो डायरी है उस दिन पढ़ना है उस दिन नया नहीं पढ़ना है इनका
क्या?
नहीं आपने
नहीं,
आप उनका समर्थन नहीं कर रहे
इनका क्या पॉइंट है कि
पॉइंट है कि छुट्टी होनी चाहिए, कर्फ्यू लग सकता है, कुछ भी हो सकता है,
राइट है, पढ़ाई पढ़ने आप सेंटर पे नहीं जा सकते,
नहीं जा सकते
बराबर। उस दिन है कि उस दिन मनन चिंतन चलना चाहिए, बराबर है, इनका मनन चिंतन करके वो जो डायरिया हमने पुरानी लिखी हुई है, जैसे बाबा बोलते हैं कई बार आपको मुरली नहीं मिलती है तो पुरानी मुरली को ही पढ़ो ना दोबारा, वो मुरली धारण,
इनका कहना वही पुरानी मुरली पढ़ो, आप
पढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं कि छोड़ना नहीं आपको,
माइक माइक,
उस मुरली की तो छुट्टी होगी जो भगवान ने चलाई है, उससे तो छुट्टी होगी ना हमारे, हम तो वही पढ़ रहे जो छह दिन पढ़ा है
ऑलरेडी,
हमने सातवें दिन वाला तो नहीं पढ़ा, सातवें दिन तो हमारी वो छुट्टी होगी, भगवान जो आगे पढ़ा के चला गया, रह गया,
कर्फ्यू का पॉइंट कहा था पर,
कर्फ्यू का पॉइंट कहा हमने कि लेकिन छह दिन हमने जो भगवान सेंटर के यहाँ पर सुना, भगवान के महावाक्य थे, तो सातवें दिन कर्फ्यू लग गया, हम नहीं सुन सकते उसको, तो सातवें दिन हमको घर में छुट्टी है, वो तो वही पढ़ने पड़ेंगे, छठे छह दिन की पढ़ाई पढ़नी पड़ी, सातवें दिन की पढ़ी
नहीं पढ़ी आपने,
ये जो पढ़ाई अभी हमारी चल रही है साली रिवाइज कोर्स की पढ़ाई चल रही है, हर एक मुरली जो है चार पांच साल में रिवाइज होती है, चाहे साकार मुरली अवैध मुरलियां तो चल रही है, तो हर एक मुरली जो पॉइंट जो है आके जा चुकी है, हमारी बुद्धि में बैठा नहीं, अगर हमने छह दिन पढ़ाई अच्छे से पढ़ी नहीं तो सातवें दिन छुट्टी लेने का क्या मतलब है हमारा।
इस तो फिर ये पढ़ाई जो है बाबा ने कहा कि अंत तक मैं राज खोलता रहूंगा, तो और अंत में आपको मैं साक्षात्कार कराऊंगा, तो घर बैठे बाबा साक्षात्कार करा देगा, वो तो सभी सेंटर पर आ नहीं पाएंगे,
तो सेंटर साक्षात
घर पर कराएगा, आपको बाबा बतन में लेगा, सुबह पिलाएगा, तो कहीं भी पिला देगा,
पढ़ाई में बाबा हमेशा कहता है कि साक्षात्कार की कभी आस नहीं रखनी है, पढ़ाई पढ़ना है, मेन बात ये है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो,
मंजू पे खंडन करो, इनका कहना है कि एक दिन भी छुट्टी ना हो,
पक्का करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि मम्मा बाबा ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की है,
वो अरे पॉइंट चालू है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलने दो,
इसलिए लेकिन अभी जो समय आने वाला है ना, तो एक दिन तो छुट्टी होनी चाहिए, एक दिन छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि उसी समय मम्मा बाबा छोटे छोटे थे, मम्मा बाबा छोटी उम्र की थी, अभी जो आने वाले हैं ना उसमें रोग भोग सब बहुत शुरू हुआ है, इसलिए उनको एक दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि उनको अपना हजम करने के लिए सब कुछ करने के लिए, और आने वाले व्यक्ति जो है ना इतने क्वालिटी वाले नहीं आए,
क्वालिटी वाले नहीं आते,
इसलिए उनके दिमाग में धीरे धीरे जाते, तो एक दिन छुट्टी होनी चाहिए।
अब बोलो जो इन्होंने नए विद्यार्थियों का पॉइंट उठाया है,
छुट्टी होने वाली है इसलिए पढ़ते रहो तो अच्छा है,
एक साथ सबके नहीं, ये पॉइंट का फिर भी खंडन, क्योंकि इन्होंने नए विद्यार्थी जो आए हैं उनके लिए कहा है, उसका बताओ।
बाबा हमेशा कहते हैं मुरलियों में जो नए आते हैं उनको उतना ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उतना ज्यादा गैलप करना पड़ेगा, अगर उन्हें आगे जाने की इच्छा है, ऊंच पर पाने की इच्छा है, तो उन्हें उतना सारा, जैसे स्कूल में भी होता है, अगर किसी इसमें होता है कोई स्टार्टिंग से एक साल से आ रहा है, तो कोई जो पढ़ाई के अगर तीन चार महीने पहले से आ रहा है, तो एग्जाम के समय वो एक्सक्यूज नहीं दे सकता है कि मैं तीन महीने से आ रहा हूँ, बाकी का मैंने पढ़ाई नहीं पढ़ा है, उसको उसी तीन महीने में सारी की सारी पढ़ाई पढ़नी होती है उसको,
लेकिन उसमें इतनी ताकत ही नहीं है,
ताकत ही नहीं
है,
नहीं नहीं बोल रहे ना, बोलने दो बोलने दो बोलने बोलो बोलो,
उसमें इतनी ताकत ही नहीं है, इसलिए उसको तो एक दो दिन क्या तीन दिन ही छुट्टी चाहिए।
इनका तो कहना है एक दो क्या तीन दिन छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि ताकत ही कम है,
ताकत कम है ना, ताकत कम है ना, इसलिए आपको तो पता होगा कि कई लोग हैं ना तो एक वीक में एक बार आते हैं, कई लोग आपने देखा होगा एक दिन तो छुट्टी चाहिए ही चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले व्यक्ति हैं ना उसको पूरी समझ में भी नहीं आता है,
समझ में नहीं आता है तो रोज रोज कितना पड़ेगा, हेवी डोज हो रहा है,
इसलिए उसको छुट्टी चाहिए।
हाँ बोलो,
जब तक रोज ज्ञान का स्नान नहीं करेंगे तब तक उसमें शक्ति नहीं आएगी,
रोज ज्ञान जरूरी, ज्ञान से ही आएगी,
लेकिन स्नान करने की शक्ति भी तो चाहिए ना, स्नान करने की शक्ति भी तो चाहिए,
हाँ ज्ञान धारण करने के लिए तो शक्ति चाहिए, एक मिनट अभी लो, इधर इसमें इसमें
बाबा ने मुरली में कहा है ना कि ज्ञान को धारण करने के लिए बुद्धि सोने का बर्तन चाहिए, तो बुद्धि स्वच्छ कैसे बनती है बाबा की याद से, तो हम अगर संडे को एक दिन छुट्टी लेके प्रॉपर याद करेंगे बाबा को, तो जो
संडे को छुट्टी लेके प्रॉपर याद करेंगे तो सोने का बर्तन बनेगा और फिर ज्ञान धारण होगा। आप बोलो,
अच्छा इसमें जैसे कि बाबा ने बोला है कि कोई भी अगर श्रीमत और मर्यादा के खिलाफ चलता है तो बाबा ने बोला वो आपका आपका प्रमाण है,
तो
इसीलिए
तो बाबा की श्रीमत है रोज पढ़ाई पढ़ना है, अगर आप एक दिन छुट्टी लेते हो तो आप हाफ क्लास ब्राह्मण है। आप बोलो, इधर लाओ, इधर दे दो, सुशील भाई हाफ क्लास, हाँ आप बोलो,
देखो बाबा तो रहम दिल है, वो हर बच्चे पर रहम करता है,
बाबा रहम दिल है
वो तो हर बच्चे पर रहम करता है, उसके तो बच्चे हैं सभी,
इसलिए हाफ कास्ट हो या फुल कास्ट हो वो तो सबको लेके जाएगा,
सबको लेके
छुट्टी तो आए नहीं आए की कोई बात नहीं, मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार तो सबको ही है।
अरविंद भाई,
बाबा ने कहा कि जो अनन्य बच्चे हैं वो नेमिनाथ नहीं होंगे, किधर ले आके पढ़ाई करनी है।
इनका कहना है कि वो नेमिनाथ, वो मतलब क्या है, आए बैठे और बस कर रहे, अनुभव कुछ नहीं है ना।
बाबा रामदिल है तो कालो का महाकाल भी है।
हाँ, तो बाबा कालो का काल है, आप बोलो।
हाँ, तो अभी अटेंडेंस नहीं लगेगा तो वहाँ पे जाके पूरा हिसाब लेगा हमारा।
अटेंडेंस हाँ, अगर नहीं लगेगी तो हिसाब लेंगे।
हिसाब तो लेगा, वो तो उसी का भी लेगा जो रेगुलर जा रहे हैं, हिसाब हाँ, तो लेगा दोनों। लेकिन प्रश्न ये है कि छुट्टी की बात चल रही है उसका।
हाँ,
छुट्टी तो रैम उस पर भी करता है, कालों का काल सबके लिए है, लेकिन रैम उनके लिए जो नहीं भी आ रहे हैं उसके लिए रैम करता है वो।
स्कूल में भी जैसे होता है कि साल भर की अटेंडेंस जो ली जाती है तो उसमें मार्क्स होते हैं कि भाई इसके पूरी हाजिरी पूरे दिन है या नहीं। अगर समझो कभी बीमार है, कुछ प्रॉब्लम भी है अगर उसको, तो उसकी जो पूरी हाजिरी अगर अटेंडेंस पूरी है 80% 90% जितनी चाहिए तो उसके उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए इसमें जो है अगर हम पढ़ाई रोज पढ़ेंगे तो उसके हमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे हमको।
लास्ट पॉइंट इनकी तरफ से।
हाँ, कोई भी देखिए जो इंटेलिजेंट होते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट होते हैं वो तीन दिन की पढ़ाई दो घंटे में पढ़ लेते हैं, पेपर समय के जो एक साल रेगुलर जाते रहते हैं वो फेल भी हो जाते हैं और जो नहीं है वो पास भी हो जाते हैं।
कमजोर स्टूडेंट भले हो लेकिन एक दिन भी अगर मिस नहीं करता है तो वो हमेशा के लिए उसको पास करना जरूरी है।
ठीक है, बस बस बस। तो ये थे दोनों पक्ष। तो कंक्लूजन ऐसा है कि रोज पढ़ाई पढ़नी भी है और रोज साथ साथ चिंतन भी करे, रोज पढ़ाई पढ़नी भी और साथ साथ योग भी करे, रोज पढ़ाई पढ़नी भी है और साथ साथ स्थिति भी बनाए, रोज पढ़ाई पढ़नी भी है पर यह भी ध्यान रखे कि कभी भी ये बंद हो सकता है कि हम सेंटर पे पहुंचे, कर्फ्यू लग सकता है, ये वाली सारी पॉइंट्स उसमें आ जाती है। तो परिस्थिति कभी भी आ सकती है, हमें पढ़ाई तो रोज पढ़नी है पर इसका मतलब ये भी नहीं कि नेमिनाथ बन जाए। नेमिनाथ अर्थात रोज जाने वाले पर अनुभव कुछ नहीं, 10 साल पहले जो उत्तर दिया था वही उत्तर आज भी दे रहे, तो अनुभव नहीं, प्राप्ति नहीं, कुछ खाली नाम मात्र जा रहे वो भी नहीं। और दूसरी तरफ बाबा ने कहा था अनन्य, अनन्य अर्थात हाँ, अभी हम ये जो क्लास है ना इसमें हर संडे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इस सप्ताह का अनन्य बच्चा। मतलब उनका ऐसा कहना है कि रोज जाने का कुछ मतलब नहीं है, कभी कभी जाना चाहिए। तो जिसकी सबसे ज्यादा छुट्टी होगी इस क्लास में उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा इनाम के तौर पर कि इस सप्ताह का अनन्य बच्चा। ठीक है, अब वो मंडे, आज कौन सा वार है, अगले मंडे से चालू होगा। हाँ, अगले मंडे से सैटरडे संडे तक, मंडे टू सैटरडे हफ्ते का अनन्य बच्चा एक सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, वो उसको यहाँ पर बख्शीश के रूप में दिया जाएगा, इस सप्ताह का अनन्य बच्चा। मतलब उनका ऐसा कहना है कि वो नेमिनाथ नहीं है, रोज जाके जा रहे हैं, और क्या है रोज रोज थोड़ी ना होता है। हाँ, उनको होमवर्क भी और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा साथ साथ। तो हर सप्ताह का अगर वो उस दिन जिस दिन सर्टिफिकेट देना है संडे उस दिन नहीं आते तो सर्टिफिकेट उनको पहुंचाया जाएगा किसी और के द्वारा। ठीक है, अगर वो नहीं आते हैं यहाँ पर तो हर सप्ताह का एक अनन्य बच्चा, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा एब्सेंटी है क्लास में उनको दिया जाएगा ये। तो ये एक तो कहने का भाव है, ये जो अभी जो हमने डिबेट की इसमें से अभी आपने दोनों ही पक्षों के ऊपर चिंतन करना है, दोनों ही पॉइंट्स के ऊपर, उसके पॉजिटिव उसका निगेटिव, दोनों फॉर अगेंस्ट। और इससे क्या होगा, वैसे तो बाबा ने जो श्रीमत दी है वो सबको पता है परंतु ये डिबेट का लक्ष्य है हमारी चिंतन थोड़ा शार्प हो जाए इससे, क्योंकि जो पॉइंट बहुत बार आ जाते हैं उधर से ऐसे होते हैं कि हमने शायद उसके ऊपर आज तक सोचा ही नहीं कभी, और वो ये अभी यहां से जाने के बाद में आप जाएंगे अपने अपने घर पे रूम पर तो याद, अगर इसको याद करो या फिर से सुनो ना तो आपको फिर पॉइंट याद आएगा कि इस पॉइंट को ये पॉइंट बोलना चाहिए था, ये पॉइंट तो हमने सोचा ही नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे ज्ञान के रहस्य है कि जो हमने सोचे ही नहीं आज तक। तो ये हो गया, अभी अगला जो डिबेट होगा उसका जो टॉपिक होगा उसमें वैसे ही एक ग्रुप दो ग्रुप पर दोनों तरफ का चिंतन करना है क्योंकि तीसरा चरण में ग्रुप चेंज होता है। तो अगला जो चर्चा होगी उसका टॉपिक है कि ज्ञान योग में गीत संगीत कविताएं सुनना चाहिए, गाना चाहिए, लिखना चाहिए या नहीं, इसके दोनों पक्ष, मतलब गीत संगीत कविताएं ये सारी चीजें आवश्यक है या नहीं आवश्यक है, दोनों ग्रुप को ऐसे ही टर्न होगा, तो दोनों ही पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट सारी लिख के लानी है। ठीक है, ओम शांति।